तो आज हम श्री उपदेशामृत के आठवें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि पांचवें से आठवें श्लोक में मध्यम अधिकारी गोस्वामी के आंतरिक विकास और उनकी दृष्टि का वर्णन है और इस भाग का ये अंतिम श्लोक है, आठवां श्लोक। आपको ये भी याद होगा कि जब सबसे पहले क्लास में वैधि साधन भक्ति, रागानुग भक्ति आदि की चर्चा हुई थी तो ये बताया गया था कि पहले सात श्लोक कौन सी भक्ति से संबंधित हैं, वैधि साधन भक्ति से, और आठवां श्लोक, देखिए आपके नोट्स देखिए, रागानुग आपके नोट्स खोलिए, सबसे पहले दिन में देखिए, जो 11 श्लोक हैं उनमें इस वैधि साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति और भाव और प्रेम भक्ति का विभाजन कैसे हुआ है ये बताइए।
साधन भक्ति का वैधि भक्ति 1 से 7 श्लोक, रागानुग भक्ति श्लोक 8
जी,
साध भक्ति में भाव भक्ति और प्रेम भक्ति जो कि 9 से 9-10 के आरंभ।
ठीक है, तो पहले 7 श्लोक में वैधि भक्ति की चर्चा है, इस 8वें श्लोक में रागानुगा साधन भक्ति की चर्चा है और 9वें से 11वें श्लोक में भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति की चर्चा है। तो ये 8वां श्लोक है, तो यहां रागानुगा साधन भक्ति की चर्चा है, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि इस श्लोक का विषय है श्री व्रज भजन प्रणाली। आप देख रहे हैं ना आपके नोट्स में, श्री व्रज भजन प्रणाली, व्रज भजन कैसे किया जाता है, ये रागानुगा भजन है। तो रागानुगा क्या है इसकी चर्चा भी संक्षिप्त रूप में हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये भी वसंत तिलक छंद में है, तत् नाम रूप चरिता आदि सुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तत् अनुरागी जन अनुगामी कालम् नये अखिलम् इति उपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तननु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। हाँ जी,
तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो रक्मेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण मनसा मनसि नियोज्य कालं नयेदखिल मृत्युपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युपदेश सारम्
माताजी
तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युपदेश सारम्
तत् भगवान कृष्ण का नाम पवित्र नाम रूप स्वरूप चरित आदि चरित्र लीलाएं आदि सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में अनुस्मृत्यो तथा स्मरण करने में क्रमेण धीरे धीरे रसना जीभ मनसी तथा मन नियोज्य लगाकर तिष्ठन रहते हुए व्रजे व्रज में तत् भगवान कृष्ण को अनुरागी अनुरक्त जन व्यक्ति अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए कालम काल या समय को नयेत उपयोग करना चाहिए अखिलम पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश उपदेश का सारम सार मूल तत्व श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय चौबीसों घंटे भगवान के दिव्य नाम दिव्य रूप गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे व्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिह्नों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। पहले क्लास में जो सूची के दौरान बताया गया था, फिर से दोहराया हुआ है। और फिर आठवें श्लोक में कौन सी बातें की गई हैं, इनको यहां इस चार्ट में बताया हुआ है। सर्वप्रथम इस श्लोक में यह कहा गया है कि हमें अपना पूरा समय भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप आदि के कीर्तन एवं स्मरण में जीभ तथा मन को व्यस्त रखना चाहिए। कालम नयेद अखिलम, कालम नयेद अखिलम मतलब सारा समय चौबीसों घंटे। इति उपदेश सारम, तो ये उपदेश का सार है, समस्त उपदेशों का सार ये है। तो कालम नयेद अखिलम, सारे समय में हमें क्या करना चाहिए? तन नाम रूप, तन मतलब उनका श्री कृष्ण का, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्य हो। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप चरित्र लीलाएं आदि इनके बारे में कीर्तन करना चाहिए, अनुस्मृत्य बार बार स्मरण करना चाहिए। क्रमेण क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, नियोज्य मतलब युक्त करना व्यस्त कर देना, रसना मतलब जीभ और मनसी मतलब मन, मन और जीभ को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम लीला गुण आदि के वर्णन में स्मरण में व्यस्त कर देना चाहिए चौबीसों घंटे। ये सारे उपदेश का सार है। तो ये पहली बात है जो श्लोक में कही गई है। दूसरी बात क्या है? व्रज में निवास करना चाहिए भक्तों के मार्गदर्शन में। यहां श्लोक में कहां कहा गया है ये? तिष्ठन व्रजे, नहीं केवल तिष्ठन व्रजे। तिष्ठन व्रजे मतलब व्रज में निवास करना चाहिए। तत् अनुरागी जनानुगामी मतलब तत् अनुरागी, तत् मतलब उनके कृष्ण के, कृष्ण के प्रति जो अनुरक्त हैं, अनुरागी भक्त हैं उनके। राग मतलब आसक्ति, जो तीव्रता से आसक्त है भगवान श्री कृष्ण से, उनको अनुरागी भक्त कहते हैं। तत् अनुरागी जन, ऐसे जनों का जो अनुरक्त हैं, आसक्त हैं भगवान श्री कृष्ण से और जो वृंदावन में निवास करते हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए। तो कृष्ण के प्रिय अनुरक्त भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। किन भक्तों की चर्चा हो रही है यहां पर? कृष्ण के पार्षदों की, विशेष करके विशेष करके कृष्ण के पार्षदों की चर्चा हो रही है। तो अब यहां जब हम कह चुके हैं कि आठवें श्लोक में रागानुग भक्ति की चर्चा हो रही है, तो हमें यह स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि रागानुग भक्ति क्या है, वैधि भक्ति क्या है, साधन भक्ति क्या है। इसकी चर्चा आप संक्षेप में कर चुके हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। कहां तक पहुंचे हैं आप भक्ति रसामृत सिंधु में? मतलब वैधि भक्ति साधन भक्ति की परिभाषा तो आप जान चुके हैं, रागानुग भक्ति तक नहीं पहुंचे हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए साधन भक्ति क्या है, अपने शब्दों में बताइए। कौन बताएंगे? हाँ बताएंगे। बहुत अच्छा, ये साधन भक्ति कहलाती है। साधन भक्ति वो भक्ति है जिसमें हम भगवान की सेवा करते हैं नियमों के अनुसार, हमारी इंद्रियों का प्रयोग करके, और ऐसे भक्ति करने से भाव भक्ति का साध्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये साधन भक्ति है। तो ये हमारा साधन है। कैसे है ये साधन? हाँ, क्या क्या करना पड़ता है? साधन क्या होते हैं? इंद्रियों को किस प्रकार से हम लगाते हैं? जैसे जप करना, जप करना, श्रवण करना, दर्शन करना, भागवत का पाठ करना, है ना? इन सब कार्यों से हमारे समस्त इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। तो ऐसे जब किया जाता है एक गुरु के आदेशानुसार, तो शनि शनि प्रगति होती रहती है और व्यक्ति भाव भक्ति की ओर बढ़ता है। तो साधन भक्ति के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। कौन से? भाव भक्ति नहीं, वैधि और रागानुगा। वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। अच्छा, अब वैधि भक्ति की परिभाषा दीजिए। गुरु के आदेशों का पालन, कठोरता से पालन करना। मतलब रागानुगा भक्ति की अवस्था में गुरु के पालन के आदेश का पालन नहीं करते हैं। क्या स्वाभाविक रूप से होता है? स्वाभाविक रूप से होता है, ठीक है। क्यों होता है स्वाभाविक रूप से? अनुरक्ति या रुचि पैदा होती है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से उन्हीं कार्यों को करते हैं जो वैधि भक्ति में करते हैं। वैधि भक्ति में हम क्या कार्य करते हैं? सुबह उठना, माला करना, भागवत पढ़ना, जप करना, ये सब कार्य हम वैधि भक्ति की अवस्था में करते हैं गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार। वैधि भक्ति में भक्त आज्ञाकारी होता है और वो अपनी भजन क्रिया इसलिए करता है कि वो आज्ञाकारी है। इतनी बुद्धि है उसको कि गुरु और शास्त्रों का पालन, के आदेशों का पालन करना चाहिए, करने से मेरा भला होगा, नहीं करने से बुरा होगा, इतना वो जानता है, इसमें दृढ़ श्रद्धा उसको है, तो इसलिए वो पालन करता है। परंतु स्वाभाविक रूप से उसको रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो वैधि भक्ति के नियमों का पालन अच्छी तरह से करता है, तो क्रमशः वो ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जबकि उसकी रुचि जागृत हो जाती है और स्वाभाविक रूप से ये भजन क्रिया को करने लगता है। तो और विस्तार में इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसको घुमाएंगे। तो ये उत्तम भक्ति का वर्णन फिर से, ये आप पहले देख चुके हैं, फिर भी उत्तम भक्ति के तीन भाग हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति साध्य है, साधन भक्ति साधन है। साधन भक्ति के दो भाग हैं, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। तो साधन भक्ति की परिभाषा क्या है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में बताते हैं। सनातन गोस्वामी को जब उन्होंने शिक्षाएं दी वाराणसी में, तो अनेक विषयों की चर्चा की। उनमें से उन्होंने ये भक्ति के प्रकार, विविध प्रकार, इनका वर्णन भी किया। ये श्लोक आपने पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में, किसको कंठस्थ है? हाँ बोलिए। सा साधना भिदा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो क्या मतलब है इसका? कृति साध्या मतलब ये इंद्रियों के द्वारा संपन्न होता है। कृति साध्या भवेत, भवेत मतलब फिर क्या होता है? साध्य क्या है वो साध्य? भाव। कृति साध्या मतलब ये साधन भक्ति क्या है जो इंद्रियों के द्वारा संपन्न किया जाता है, और जब ऐसे होता है तो भवेत क्या होता है? साध्य क्या है? भाव भक्ति। सा साधना भिदा, इसको साधन भक्ति कहते हैं। और आगे नित्य सिद्ध से, हाँ ऐसा नहीं कि ये कोई बाहरी वस्तु है जिसको हम हृदय में खींच के ले आए। नित्य सिद्धस्य, तो हमारे हृदय में ही है, केवल इसे जागृत करना है, इसे प्रकट कराना है हृदय में, बस हृदय में ही है ये। ये श्लोक आपने भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा था, फिर भी पुनः आप लिख सकते हैं। कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधनाभिधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय के 105वें श्लोक में यही श्लोक दिया हुआ है। अनुवाद, जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वह साधन भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर स्थित रहती है। इस नित्य भक्ति का उदय ही भक्ति की साध्यता है। अच्छा, तो अब साधन भक्ति के लक्षण बताइए। पहली बात, ठीक है लिख लिया। इस नित्य भक्ति का उदय ही भक्ति की साध्यता है। अच्छा, तो अभी साधन भक्ति के दो लक्षण बताइए। साधन भक्ति, साधन भक्ति के दो लक्षण जो इस परिभाषा से हम जान सकते हैं, पहली बात इंद्रियों के द्वारा संपन्न, दूसरी बात उससे भाव भक्ति प्राप्त होती है। ये दो लक्षण हैं साधन भक्ति के। फिर से बोलिए, कौन से दो लक्षण हैं? इंद्रियों के द्वारा की जाती है, उससे भाव भक्ति प्रकट होती है। ठीक है, ये है साधन भक्ति। हम क्या कर रहे हैं, भाव भक्ति या साधन भक्ति? साधन भक्ति। और साधन भक्ति के अंतर्गत किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं? वैधि भक्ति, वैधि साधन भक्ति। ठीक है, चार्ट घुमा लीजिए। बहुत छोटा हो गया नहीं? आप पढ़ पा रहे हैं? केवल ये पढ़ पा रहे हैं, इन्होंने लिखा ना, ये अकेले पढ़ पा रहे हैं। बहुत अच्छा, दृष्टि बहुत तेज है। ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, रागहीन जन भजे शास्त्र आज्ञाएं। रागहीन, अच्छा पहले लिख लीजिए फिर बाद में चर्चा करते हैं। वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्र गाए। बंगाली है, बंगला है, इसलिए ये वैधि भक्ति की परिभाषा है। ठीक है, रागहीन जन भजे शास्त्र आज्ञाएं। जो रागहीन जन हैं वो भजते हैं, क्यों भजन करते हैं, भक्ति करते हैं? क्यों? शास्त्र की आज्ञा है इसलिए करते हैं। वैधि भक्ति बोले तारे शास्त्र गाय, सब शास्त्र गाय। तो सब शास्त्रों में ऐसी भक्ति को क्या कहा गया है? वैधि भक्ति। क्यों? यानी क्यों कहा गया है वैधि भक्ति? विधि विधानों का पालन हो रहा है। क्यों? आज्ञा है, केवल आज्ञा पालन कर रहे हैं वो। रागहीन है, राग या आसक्ति नहीं है, केवल आज्ञाकारी है वो भक्त। तो इसका अनुवाद पढ़िए, जिन्हें रागानुगा भक्ति, रागानुगा होनी चाहिए, जिन्हें रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी है, वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी भक्ति वैधि भक्ति कहलाती है। जिन्हें नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ये गलत है। रागानुगा नहीं, ये काट दीजिए। नहीं, पूरा क्यों काट रहा? यहाँ भी चैतन्य चरितामृत में भी गलत लिखा है, इसलिए मैंने केवल श्लोक का नंबर बोला था। इन्होंने लिखा तो सही लिखा लेकिन किताब में ही गलत है। लेकिन खैर आप मतलब समझ गए ना। जिन्हें रागानुग भक्ति प्राप्त नहीं हो चुकी है होना चाहिए। या ऐसे लिखना चाहिए जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति राग उत्पन्न नहीं हुआ है, वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। ठीक है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति राग उत्पन्न नहीं हुआ है, वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी भक्ति वैधी भक्ति कहलाती है। ठीक है, तो वैधी भक्ति के लक्षण बोलिए। पहला लक्षण ये है कि वो भक्त हैं लेकिन उनके हृदय में राग उत्पन्न नहीं हुआ है। दूसरी बात, एक गुरु के निर्देशानुसार मार्गदर्शन में शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन अच्छी तरह से करते हैं, तो यह है वैधी भक्ति, रागहीन जन। ये पहला लक्षण है। और शास्त्रेर आज्ञाए, शास्त्रों की आज्ञा पालन, ये दूसरा लक्षण है। जैसे साधन भक्ति के दो लक्षण थे, वैसे वैधी भक्ति के भी ये दो लक्षण हैं। रागहीन, शास्त्रों के गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, तो साधन भक्ति की परिभाषा हो गई, अभी वैधी भक्ति की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आगे रागानुगा भक्ति की परिभाषा। क्षमा कीजिए, यहां थोड़ा काटकूट हो गया। तो महाप्रभु कहते हैं, रागात्मिका भक्ति मुख्या व्रजवासी जने तार अनुगत भक्ति रागानुगा नामे। वैसे महाप्रभु ने विस्तार में समझाया है, परंतु ये हमारा मुख्य विषय उपदेशामृत पर नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा हम और बढ़ा नहीं रहे हैं। रागात्मिका भक्ति मुख्या व्रजवासी जने तार अनुगत भक्ति, मुख्या मुख्या तार अनुगत भक्ति रागानुगा नामे। इसका मतलब है रागात्मिका भक्ति ये ब्रजवासी ब्रजवासियों की भक्ति है मुख्यतः, और जो ऐसे ब्रजवासियों के अनुगत हैं और उनके पीछे पीछे ऐसी भक्ति करते हैं, उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, नामे वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से रागात्मिका भक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं, ऐसी इस रागात्मिका भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करता है तो उसकी भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। ये अनुवाद है। हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप लिखिए। वृंदावन के मूल निवासी, वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से रागात्मिका भक्ति द्वारा कृष्ण से रागात्मिका भक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं, ऐसी इस रागात्मिका भक्ति ऐसी इस रागात्मिका भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, तो उसकी भक्ति क्या कहलाती है? रागानुगा भक्ति कहलाती है। ठीक है, अच्छा अपने शब्दों में समझाइए अब रागानुगा भक्ति क्या है बिना देखे। तो जो वृंदावन के निवासी हैं उनकी भक्ति को क्या कहते हैं? रागानुगा या रागात्मिका? रागानुगा है। तो वृंदावन के भक्त जो भक्ति करते हैं वो रागात्मिका भक्ति है, और जो उनका अनुसरण करते हैं उनकी भक्ति रागानुगा भक्ति है। ठीक है, राग मतलब तीव्र आसक्ति, आत्मिका मतलब जिस भक्ति का प्राण ही वो राग है वो रागात्मिका भक्ति है। राग भक्ति या रागात्मिका भक्ति, तो ये अतुलनीय भक्ति है, केवल वृंदावन के निवासी ही ऐसी भक्ति कर सकते हैं और कोई नहीं, वैकुंठ जगत में अन्य किसी भी लोक में ये संभव नहीं है। तो जो भक्त ऐसे ब्रजवासी भक्तों के पदचिन्हों में चलते हैं, उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तो उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। उनका पथ है रागानुगा भक्ति। ये रागानुगा शब्द का भेद करके समझाइए, ये क्यों ऐसे रागानुगा क्यों कहा गया है? शब्द भेद करिए, राग अनुगा, अनुगा क्यों, अनुग क्यों नहीं, स्त्रीलिंग है ना भक्ति, अनुगा, तो राग अनुगा, कभी कभी यहां रागानुग भी कहते हैं लेकिन ये रागानुगा वास्तव में है। तो राग भक्तों के पदचिन्हों में चल के उनका अनुसरण करना ये रागानुगा भक्ति है। अनुग अनु ग अनु मतलब पीछे पीछे, ग मतलब गमन करना जाना, तो राग भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना ये राग अनुगा हो गया। ठीक है, रागानुगा भक्ति। तो अभी हम समझ गए हैं कि साधन भक्ति क्या है, वैधि साधन भक्ति क्या है, रागानुगा साधन भक्ति क्या है। ठीक है, तो आइए अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। आज कौन पढ़ेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? सबने पढ़ लिया, माता जी आप पढ़े।
क्योंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र हो सकता है, अतः उसे मन को अपना मित्र बनने की शिक्षा देनी चाहिए। इसमें धार्मिक आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के व्यापार में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजार संस्कार है जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के हैं। कभी कभी ये संस्कार छह में कहा गया है, यम यम वापी स्मरण भावम तेजस यंते कलेवरम कम समय में अति कौटते है सदा सद्भाव भाव कर। अपना शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु को सोचता है जो हितकर नहीं है तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई अपनी मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ को भेज दिया जाता है। यह देहांतर की विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतः श्री रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण न रख सकें। इसी प्रकार जीव को कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
ठीक है, तो अब यहाँ मन के नियंत्रण की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी कि मन का महत्व क्या है, इसे घुमाएंगे। मन के कार्य क्या हैं, मन का महत्व क्या है, मन मित्र या शत्रु। अनियंत्रित मन बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है, सही है ना? सही है, बन सकता है, कोई संशय है इसके बारे में? नहीं ना। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। ये सब तात्पर्य से ही लिया हुआ है। अनियंत्रित मन से क्या समस्याएं होती हैं, यह इनका वर्णन है कि मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण हम करते हैं उसी प्रकार का शरीर हमें मिलता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि आपने कोई अच्छी चीज का स्मरण नहीं किया तो हानिकारक अवस्था हो जाएगी, अगला जन्म भी अच्छा नहीं होगा और कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो मृत्यु के समय जो चेतना बनी हुई होती है, जिस प्रकार से हमारा मन होता है, हमारी बुद्धि होती है, एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म शरीर वाले सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण होता है मृत्यु के समय। हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है ये, इसलिए मन को किसी न किसी तरह से नियंत्रण में लाना चाहिए। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सकें। यही है ना हमारे जीवन का लक्ष्य कि कृष्ण के अतिरिक्त और किसी चीज का स्मरण नहीं करें। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन को भेज दिया जाता है, ये लाभ है मन को नियंत्रित करने से। और जैसे हम पहले श्लोक वाचो वेगम आदि में पढ़ सुन चुके हैं कि मन को वश में करने का एक ही रास्ता है और वो है मन को कृष्ण में केंद्रित करना। तो मन को केंद्रित करने का लाभ इस प्रकार से है कि हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, मृत्यु के बाद गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। सब लिख लिया आपने? अच्छा, आगे पढ़ेंगे फिर। दोष वैसे वास्तव में क्रोश है, लेकिन यहाँ कोस कह देते हैं। तो यहाँ पर रागानुग भक्ति का वर्णन है। हम क्यों कहते हैं कि रागानुग भक्ति का वर्णन है, क्या यहाँ दिखाई पड़ता है जिससे हम ये कह सकते हैं? हाँ, पहली बात तो ये है ब्रज में वास है, दूसरी बात है श्री कृष्ण और उनके पार्षदों का स्मरण, और ऐसे श्री कृष्ण के पार्षदों के पद चिन्हों में का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अनुरक्त रहते हैं। तो यह रागानुगा है ना, और भी रागानुगा भक्ति का वर्णन आगे करते हैं प्रभुपाद जी। हाँ पढ़िए। ठीक है, एक मिनट है। यहाँ भी रागानुगा भक्ति के लक्षण या उनके लक्षणों का वर्णन है, एक एक करके बताइए क्या लक्षण, कौन से लक्षणों का वर्णन यहाँ पर है? पहली बात व्रज, व्रज में निवास। दूसरी बात भगवान की सेवा ब्रज में। तीसरी बात
परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की इसी भावना से करनी चाहिए, भगवान के पार्षद करते
तो। हाँ, ये तो रागानुगा है ना, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं वो जिस प्रकार से करते थे वैसे उनका अनुसरण करना, यही तो रागानुगा है। ठीक है। हाँ, तो व्रज के दिव्य क्षेत्र या व्रज धाम में, ये पहली बात, परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए। दूसरी बात, तो कृष्ण की सेवा किस भाव से? जैसे पार्षदों ने की भगवान की सेवा, उस भाव से। तीसरी बात, और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रख कर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तीसरी बात कि विशेष कोई पार्षद को पकड़ लिया मन में, किसी एक प्रेमी भक्ति के मार्गदर्शन में, ऐसे मनगढ़ंत ढंग से नहीं, चलो मुझे सुबल अच्छे लग गए, मुझे मोर अच्छा लग गया, ऐसे नहीं, मार्गदर्शन में ऐसे किसी भगवान के पार्षद को चुनकर जो समभाव के हैं, फिर उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना। और चौथा लक्षण क्या है? साधन और साध्य दोनों अवस्था में क्या लागू होती है, कौन सी विधि? रागात्मिक विधि, हाँ रागानुगा भक्ति, अर्थात क्या, ये कौन सी विधि की बात हो रही है यहाँ पर? कि एक ब्रज के पार्षद के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में रह के उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना, ये विधि साधन और साध्य दोनों अवस्था में लागू होती है। आप समझ रहे हैं? नहीं, हाँ नहीं नहीं, देखिए रागानुग भक्ति भी साधन भक्ति के अंतर्गत आती है ना, सही है ना। तो रागानुग भक्ति में जब कोई भक्त किसी एक भगवान के नित्य पार्षद के पदचिन्हों का अनुसरण करता है और प्रत्यक्ष अपने आप को उनके मार्गदर्शन के नीचे रखता है, तो यह रागानुग भक्ति है, सही है ना। रागानुगा है ये, रागानुगा भक्ति है। तो जब वो भक्त रागानुगा भक्ति की अवस्था से आगे बढ़ेगा भाव भक्ति से लेकर प्रेमा भक्ति में, तो इस प्रकार से चिंतन करना या उस भक्त का अनुसरण करना, क्या वो छोड़ देगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए यहां कहा गया है कि ये विधि, कौन सी विधि, किन के पद चिन्हों में चल के, रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों में चलने की जो विधि है, उनको प्रत्यक्ष, उनका प्रत्यक्ष आश्रय लेके उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत भगवान के रागात्मिक भक्त जो उनके नित्य पार्षद हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना, ये विधि है, प्रमुख विधि है रागानुगा भक्ति की। तो ये विधि रागानुगा भक्ति में भी लागू होती है और साथ साथ प्रगति के बाद प्रेमा भक्ति की अवस्था में भी लागू होती है। हाँ, इसकी चर्चा बाद में होगी। सोच लीजिए कोई व्यक्ति, देखिए हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, नकल नहीं कर सकते। जैसे प्राकृत सहजीय लोग होते हैं वो अनुकरण करते हैं, पहली बार वो आता है और वो तथाकथित गुरु होते हैं, वो कहते हैं भाई तुम मोर हो गोलोक वृंदावन में, या तुम गोपी हो, या तुम सखा हो, ऐसे कह देते हैं और तुरंत उसे उस कार्य पर लगा देते हैं जो नित्य लीला वहां चल रही है। जिस प्रकार से सखाएं कृष्ण की सेवा करते हैं उस हिसाब से यहां उसे उस तरह के लगा देते हैं। परंतु रागानुगा भक्ति, जैसे हम आगे चल के देखेंगे, केवल उन लोगों के लिए है जिनकी स्वाभाविक रुचि जागृत हो चुकी है। जिसकी स्वाभाविक रुचि जागृत नहीं हुई है उसके लिए वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति करके फिर भक्त रागानुगा की अवस्था को प्राप्त होगा, ठीक है। तो रागानुग ये सस्ती बात नहीं है, नकल करने की बात नहीं है। परंतु कोई ऐसा भक्त हो जिसके मन में वास्तव में रुचि है और वो सोचता है गुरु के मार्गदर्शन में, या गुरु मार्गदर्शन उसके सिखलाते हैं कि भाई तुम ठीक है, तुम एक सखा, सखा का अनुसरण करना, तो वो किसी एक अमुक पार्षद भगवान के सखा जो है उनको चुनेगा। समझ लीजिए सुबल सखा है, तो सुबल सखा की लीलाओं को, सुबल सखा के ऊपर ध्यान करेगा श्री कृष्ण के साथ साथ, सुबल सखा की क्या लीलाएं हैं कृष्ण के साथ, किस प्रकार से सुबल सखा सेवा करते हैं श्री कृष्ण की, क्या प्रेम का आदान प्रदान दोनों के बीच में होता है, इसके बारे में चिंतन करेगा, मनन करेगा रागानुगा भक्ति की अवस्था में, ठीक है। और रागानुगा भक्ति की अवस्था से आगे चल के भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति, तो फिर क्या होगा, ये विधि सुबल सखा का अनुसरण करने की जो विधि है उसका क्या होगा, चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, बल्कि वो और परिपक्व हो जाएगी, वो भावना और दृढ़ हो जाएगी, गाढ़ हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में यहां कहते हैं कि सिद्ध पुरुष के लिए और साधक के लिए, साधन भक्ति में और साध्य भक्ति में, दोनों में ये विधि लागू है। आप सब समझ गए कि अभी तक स्पष्ट नहीं है? आप में से कौन से भक्तों को स्पष्ट नहीं हुआ हाथ ऊपर कीजिए। सबको हुआ? कितने नहीं? नहीं, मतलब जो विधि है, कौन सी विधि है? रागात्मक का भक्त जो है, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनका उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना, ये विधि है रागानुगा भक्ति की। तो रागानुगा भक्ति की अवस्था में इस विधि का पालन हम करते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रगति होगी, प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करेंगे, क्या इस विधि को त्यागेंगे? नहीं त्यागेंगे। क्यों नहीं त्यागेंगे? यही साध्य है हमारा, यही तो लक्ष्य है हमारा कि हम जाकर वहां सुगल सखा के उनके पार्षद बन जाएंगे, उनके सेवक बन जाएंगे। समझ गए ना? इसलिए भावना और तीव्र हो जाएगी, गाढ़ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इसको हम त्यागेंगे। इसलिए दोनों अवस्थाओं में, साधक की अवस्था में, सिद्ध अवस्था में, दोनों में ये विधि लागू होती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कल ये गोलाकार में, भजन क्रिया में हम क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं भजन क्रिया में? हरि नाम जप करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो आगे चल के भाव भक्ति में करेंगे कि नहीं करेंगे? कि भाव में पहुंच गए तो नाम छोड़ दिया? नहीं। तो ये विधि रहती है ना, भजन क्रिया की विधि अगर नाम जप है तो भाव भक्ति में भी तो नाम जप होता है। उसी प्रकार से रागानुगा भक्ति की जो विधि है वो भी तो आगे चल के प्रेम भक्ति में रहेगी। इसलिए साधन और साधक और सिद्ध दोनों अवस्था में ये लागू है। सबके चेहरे पे वो कुछ ज्ञान का प्रकाश नहीं दिख रहा है। सब समझ गए ना? संशय है तो बताइए। अभी किन के मन में संशय है हाथ ऊपर कीजिए। नहीं है ना? ठीक है। प्रेम भक्ति की अवस्था में नहीं, भगवान के धाम में नहीं जा सकता। वो भगवान को देख सकता है, भगवान दर्शन दे सकते हैं बीच बीच में, भगवान उसके सामने प्रकट भी हो सकते हैं, साक्षात भगवान का दर्शन कर सकता है वो। हर समय नहीं, लेकिन कभी कभी भगवान सामने भी आ पाएंगे, अष्ट सात्विक विकार भी हो जाएंगे, लेकिन लेश मात्र कुछ अनर्थ अभी तक बचे हैं। वो प्रेमा भक्ति की अवस्था में जाकर पूरे साफ हो जाएंगे। जब आप आगे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, भाव भक्ति के लक्षण भी आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो रागानुगा भक्ति का वर्णन करने के बाद अब श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका से यहां बताते हैं कि वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति का क्या संबंध है और किस प्रकार से क्रमशः भक्त की प्रगति होती है। तो ठीक है, इसके पहले ये वैदी और रागानुगा, अच्छा ठीक है, पहले एक एक परिच्छेद पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में पढ़ लीजिए। हाँ, एक मिनट, इसके पढ़ने के बाद। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। हाँ, तो क्या तात्पर्य हुआ इसका? वैधि और रागानुगा क्या तात्पर्य है इस दृष्टि से? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं?
वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति नहीं
क्यों नहीं है राधानुगम भक्त, क्या लक्षण यहाँ क्या बताया है? भौतिक आसक्ति से छुटकारा नहीं पाया है उस भक्त ने, भौतिक प्रेरणाओं से मुक्त नहीं हुआ है, और इसीलिए जैसे यहाँ कहा है वो, हाँ, शील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है। जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। किनका वर्णन है यहाँ पर, किस भक्त का वर्णन है? वैदि भक्त का, जो वैदि भक्ति का पालन करता है, जो वैदि भक्ति के लिए अधिकारी है और योग्य है। ये रागानुगा भक्ति के लिए योग्य नहीं है क्योंकि स्वाभाविक रुचि कृष्ण के प्रति जागृत नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, क्या प्रश्न था? ये बाद में देखेंगे, ये पहले अध्याय तो पढ़ लें पूरा, फिर ये सब आ जाएगा। हाँ, ये पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं और इसके बाद में अवश्य आप भगवत धाम चले जाएंगे, कोई संदेह नहीं। हाँ, इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मतलब करने के बाद फिर वृंदावन जाना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? रागानुगा भक्ति, तो रागानुगा भक्ति के लिए क्या योग्यता है? वैदिक भक्ति करके वो रुचि जागृत होनी चाहिए, तब जाकर हम वृंदावन में रह पाएंगे और फिर रागानुगा भक्ति कर पाएंगे। समय से पहले बिना रुचि जागृत हुए हम आएंगे वृंदावन में, रागानुगा भक्ति करेंगे, हम मोर हैं, सखी हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ माता जी, पढ़िए आगे।
भक्ति के अनुशीलन के विषय में प्रमुख उपदेशों का यही सारांश है। दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए, यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के गुरु प्रभु के नाम का निरंतर श्रवण करने से।
हाँ, एक मिनट, ठीक है, तो बस है? अच्छा, इसका चार्ट देखते हैं। अब जो भी वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति की चर्चा हुई है अभी तक, इन दोनों हम देख लेते हैं। मन का नियंत्रण दो मार्गों से होता है, एक है वैधि साधन भक्ति और दूसरा है रागानुगा साधन भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति उनके लिए है जिनके मन में राग उत्पन्न नहीं हुआ है कृष्ण के प्रति, दूसरी बात उनकी सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्यागना चाहिए ऐसे व्यक्ति को वैधि भक्ति करने के लिए। वैधि भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए अर्थात कृष्ण के नाम रूप आदि का कीर्तन स्मरण आदि करना चाहिए। तो वैधि भक्ति के अंतर्गत क्या करना चाहिए यहां लिखा हुआ है। ये सब करके भक्त जब थोड़ा बहुत परिपक्व हो जाता है, जब रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर हमें वृंदावन में रह के रागानुगा साधन भक्ति के पथ को अपनाना चाहिए। केवल वो रुचि जागृत करने के बाद, ठीक है, आप पढ़ पा रहे हैं? हाँ, फिर से पढ़ लूं। वैधि साधन भक्ति पहली बात उनके लिए है जिनके मन में राग उत्पन्न नहीं हुआ है, दूसरी बात, सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्यागना चाहिए ऐसे वैधि भक्त को। तीसरी बात, वैधि भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, अर्थात कृष्ण के नाम रूप आदि का कीर्तन स्मरण आदि, ये वैधि भक्ति के विधि विधान हैं। ठीक है, तो ऐसे करते रहना चाहिए, भजन क्रिया करती रह होती रह होती रहनी चाहिए। जब रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर अर्थात उसके बाद हमें वृंदावन में रह के रागानुगा साधन भक्ति के पथ को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो वैदिक भक्ति के बारे में कोई संशय? आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बताइए। वैदिक भक्ति पढ़ लिया ना? और रागानुगा साधन भक्ति, पहली बात व्रज में वास करना चाहिए, तन से न हो तो मन में वास करना चाहिए। ब्रज में सभी के लिए संभव नहीं है ना कि सब छोड़ छाड़ के यहां ब्रज में आए रहने के लिए, तो ठीक है आप जहां कहीं भी रह रहे हो मन में ब्रज में वास कीजिए, लेकिन ब्रज का वास आवश्यक है रागानुगा साधन भक्ति के लिए। दूसरी बात, ब्रज में आके एक प्रेमी भक्त के आश्रय में रहना चाहिए। व्रज में आके एक प्रेमी भक्त के आश्रय में रहना चाहिए। फिर कृष्ण एवं उनके पार्षदों का नित्य स्मरण करना चाहिए। कृष्ण एवं उनके पार्षदों का नित्य स्मरण करना चाहिए। फिर कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन करके उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रहना चाहिए। जैसे हम कह रहे थे पहले ना, सुबल सखा किसी ने चुन लिया, किसी ने रूप मंजरी को चुन लिया, तो कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन करके उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन को के अंतर्गत रहना चाहिए। और अंत में यह विधि साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। के अंतर्गत रहना चाहिए, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रहना चाहिए, स्मरण के द्वारा।
हाँ,
आध्यात्मिक स्तर पर प्रत्यक्ष ही है यह विधि। साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। ठीक है, अभी वैधि और रागानुगा भक्ति का संबंध आप जान गए ना? कोई संशय, मतभेद? मार्गदर्शन, ये तो आगे बढ़ के फिर उनके उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही चलेगा, या आध्यात्मिक स्तर में ही चलेगा। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना रूप गोस्वामी के श्लोक के दौरान, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, उस श्लोक में उसका तात्पर्य हम फिर से, उसका अनुवाद हम फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप उस श्लोक के देखिए तात्पर्य में, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, आप देख रहे हैं ना। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत, ठीक है, किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए, ठीक है।
हाँ चुनाव कौन करेगा, हम किस मतलब किस भाव से किस भक्ति
मतलब
भाव से या सखा भाव से इसका चुनाव कौन करेगा?
ये हाँ, इसलिए तो कहा गया है कि एक उन्नत भक्त, क्या पहले लिखा है ना, एक प्रेमी भक्त के आश्रय में रहना चाहिए तो उनके मार्गदर्शन के अनुसार। हाँ 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 हाँ, ये दो प्रेमी भक्त अलग अलग हैं, एक है जो यहाँ स्थित हैं जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं इसके लिए, और दूसरे हैं जो कृष्ण लीला में नित्य पार्षद हैं भगवान के, उनके धाम में उनका स्मरण हम कर रहे हैं, और यहाँ जो प्रेमी भक्त हैं हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं कैसे उनका स्मरण करें। गुरु के द्वारा, गुरु प्रकट कराएंगे क्या है हमारा स्वरूप, वो धीरे 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 से प्रकट कराएंगे। वो पहले कहेंगे साधन करो, फिर धीरे 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 से जैसे जैसे अवस्था है प्रगति है उस भक्त की, वैसे वैसे वो प्रकट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन दोनों के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में चलना है। प्रश्न ये है कि जिनकी जिनका राग उत्पन्न नहीं हुआ है तो क्या वो वृंदावन में रह के वैधि साधन भक्ति कर सकते हैं? आपका क्या उत्तर है? गुरु के आदेश अनुसार। ठीक है, अच्छा तो आगे पढ़ें। यहाँ जो है वृंदावन के प्रेमी भक्त जो अभी हैं वर्तमान काल में, एक गुरु चाहिए ना, एक गुरु चाहिए जो हमें बताएंगे कि रागनों का भक्ति कैसे करनी है, वो है।
भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। जब दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए, यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का
तो अभी यहाँ यहाँ से स्मरण की अवस्थाओं का वर्णन है। स्मरण की पांच अवस्थाएं हैं तो एक एक करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका उल्लेख करेंगे। हाँ पढ़िए।
कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुरु तथा लीलाओं के श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को प्राप्त करता है।
पहले श्रवण दशा, फिर वर्ण दशा। वर्ण मतलब स्वीकार करना।
इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा के सुनने में आसक्त हो जाता है। जब कोई उल्लास में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण स्मरण के पांच क्रमिक अंग हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अवाध रूप से चलता है।
भारी परिच्छेद है नहीं? तो इसमें स्मरण की अलग अलग अवस्थाएं हैं, शुरुआत से लेकर प्रारंभिक स्तर से लेकर बिल्कुल परिपूर्ण सिद्धि की अवस्था तक इस एक परिच्छेद में सब कुछ है। तो आप देखना चाहते हैं चार्ट रूप में ये एक परिच्छेद? इसका घुमाइए, हाँ। तो जो यहां बताया है इसका वर्णन यहां पर है। स्मरण की अवस्थाएं, आप पढ़ पा रहे हैं? श्रवण दशा, फिर बीच में जो लाइन है वो है निरंतर करने से। श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, संपत्ति दशा, आपन आपन दशा है। चलिए आपन, हाँ थोड़ा आपन। वास्तव में ये समाधि है, समाधि की स्थिति है, इसलिए यहाँ हाँ संपत्ति दशा। तो श्रवण दशा के क्या लक्षण है? वो आपन है, आपन आपन दशा। तो श्रवण दशा का लक्षण है सदैव कृष्ण कथा का श्रवण, ये प्रारंभिक दशा है। ठीक है, केवल जो तात्पर्य में कहा है यहां पर इस एक परिच्छेद में वही आप यहां इस चार्ट में पाएंगे। फिर श्रवण दशा से वर्ण दशा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? निरंतर करने से। क्या निरंतर करने से? श्रवण निरंतर करने से वर्ण दशा को प्राप्त होते हैं। तो वर्ण दशा के लक्षण क्या है? स्वीकृति का स्तर है ये, स्वीकृति, स्वीकार करते हैं। वर्ण मतलब स्वीकार करना, स्वीकृति का स्तर। कृष्ण कथा श्रवण करने में अनुरक्ति जागृत हो जाती है। अनुरक्ति अनुरक्ति अनुशक्ति नहीं। फिर स्मरण दशा, स्मरण की अवस्था, इसको स्मरण दशा कहते हैं। इसमें ऊर्मि में व्यक्ति कीर्तन करता है, बड़े उल्लास में, उल्लास में बड़े आनंद से कीर्तन करता है। तो इस स्मरण दशा के पांच अवस्थाएं हैं। ऊर्मि, ऊर्मि मतलब उल्लास। स्मरण दशा के ये पांच हैं, पांच स्तर हैं। स्मरण दशा का सर्वप्रथम स्थान है स्मरण, फिर आगे धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। तो अगर ये आप पढ़ नहीं पा रहे तो हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, यहां दे दीजिए तो आप पढ़ पाएंगे इसको। पढ़ पा रहे हैं? तो स्मरण, मतलब स्मरण स्मरण दशा का पहला जो स्तर है स्मरण, उसके लक्षण क्या है? प्रारंभिक अवस्था, मतलब स्मरण दशा की प्रारंभिक अवस्था है ये। समय समय पर स्मरण खंडित हो सकता है, समय समय पर स्मरण खंडित हो सकता है। लिख लिया आपने? फिर दूसरा है धारणा। जब स्मरण अबाध रूप से चलता है निरंतर, तो वो धारणा की अवस्था कहलाती है। स्मरण अबाध रूप से चलता है या निरंतर चलता है बिना कोई रुकावट के, तो उसे धारणा कहते हैं। ठीक है। फिर जब स्मरण और भी तीव्र हो जाती है और स्मरण केंद्रित हो जाती है, तो उस समय उसे ध्यान कहते हैं। तीव्र या केंद्रित हो जाना स्मरण। पीछे नीचे है प्रारंभिक अवस्था स्मरण का ना, स्मरण के नीचे है प्रारंभिक अवस्था, और दूसरी बात है समय समय पर स्मरण खंडित हो सकता है। फिर धारणा में स्मरण अबाध रूप से चलता है, अर्थात निरंतर रूप से चलता है। ध्यान की अवस्था में स्मरण केंद्रित होता है। ध्यान में स्मरण केंद्रित होता है। ध्यान की अवस्था क्या है? ध्यान की अवस्था वो स्थान है जहां स्मरण केंद्रित होता है। ध्यान विस्तारित होकर, इसको करिए, विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है। विस्तृत, विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है। उसके बाद है समाधि की अवस्था, जिसमें स्मरण या अनुस्मृति की अवस्था अबाध और अनवरत अवस्था में चलती है, अर्थात बिना कोई रुकावट के निरंतर अनुस्मृति निरंतर चलती है। अनुस्मृति अबाध तथा अनुवरत अनुस्मृति। हाँ? स्थिर हो जाता। तो स्मरण दशा का जो अंतिम स्तर है वो है समाधि, है ना? तो स्मरण दशा के बाद जो आपन दशा है उसे वास्तव में समाधि दशा कहते हैं। तो आपन न लिख के आप समाधि भी लिख सकते हैं, वहां पर चलेगा। तो आपन दशा को काटिए और वहां समाधि लिख दीजिए। हाँ। और उसके लक्षण हैं, स्मरण दशा पूर्ण रूप से विकसित, स्मरण दशा पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, और साथ साथ मूल वैधानिक स्थिति की पहचान हो जाती है, मतलब अपना स्वरूप। स्वरूप सिद्धि। और अंत में है संपत्ति दशा। संपत्ति दशा ये जीवन की परिपूर्णता है। इसको ठीक करिए, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये संपत्ति दशा, संपत्ति दशा ये जीवन की परिपूर्णता है। कृष्ण के साथ नित्य संबंध का ज्ञान हो जाता है, इसे वस्तु सिद्धि भी कहते हैं। वस्तु सिद्धि, वस्तु, वस्तु सिद्धि मतलब वास्तव में भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हो जाता है। उसे पता चलता है कि स्वरूप क्या है, लेकिन अभी तक यही है।
ये भजन की स्टेज हिसाब से आगे बढ़ के होता है, एक एक प्रश्नता है जो भूल बता देते यही है, ये अपने होता ना भूल बताते
दोनों दोनों से साक्षात्कार भी होता है। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार व्यक्ति भजन करता है और धीरे धीरे से दोनों दोनों चीजें हैं इसमें। प्रभुपाद जी राधा कुंड के बाबाजियों का संग करने में मना करते थे, क्योंकि वो सिद्ध प्रणाली दीक्षा देते हैं। सिद्ध प्रणाली दीक्षा, उनकी दीक्षा ये पहली बार कोई आया, चलो तुम मोर हो गोलोक वृंदावन में, तुम वो हो, तुम ये हो। समय से पहले राग उत्पन्न होने से पहले कर देना तो दिया जाता है, लेकिन सही समय पर। क्या चीज फिर से समझाएं? तो स्मरण की ये अवस्थाएं हैं, ये पांच अवस्थाएं हैं। सबसे पहले है श्रवण दशा, ये प्रारंभिक अवस्था है जिसमें हम निरंतर भगवान का श्रवण के कीर्तन या नाम का आदि श्रवण करते हैं। करते करते हम मरण दशा को प्राप्त होते हैं, जब हम इसे स्वीकारते हैं और श्रवण में अनुरक्ति होती है, ऐसा ग्रहण करना, उस श्रवण के पथ को हृदय से ग्रहण करते हैं और अनुरक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। ऐसा करते करते स्मरण दशा को प्राप्त होते हैं। स्मरण दशा के कई स्तर हैं। पहला है स्मरण, जो प्रारंभिक अवस्था है जिसमें हमारा स्मरण बीच बीच में खंडित होता है। फिर जैसे अभ्यास करते जाते हैं वैसे धारणा की अवस्था को पहुंचते हैं, जहां पर अब स्मरण खंडित नहीं होता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो ये स्मरण केंद्रित हो जाता है, तीव्र हो जाता है, तो उसे ध्यान कहते हैं। और आगे बढ़ के ये ध्यान जब विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो उसे अनुस्मृति कहते हैं। तो ये अनुस्मृति फिर जब अबाध तथा अनवरत हो जाती है या बिना रुकावट के निरंतर ये अनुस्मृति होती है तो उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। तो जब ये समाधि की अवस्था को पहुंच जाते हैं तो ये अगले दशा में अपान दशी को पहुंच जाते हैं। यहां ये स्मरण दशा की पूर्ण विकसित अवस्था है और इसमें व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है। और आगे और भी बढ़ के संपत्ति दशा की प्राप्ति होती है, जहां जीवन की परिपूर्णता प्राप्त होती है और कृष्ण के साथ नित्य संबंध का ज्ञान होता है और अंततः भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में जाने के लिए व्यक्ति योग्य होता है। ठीक है? हाँ, आगे पढ़ेंगे इसको, आगे पढ़ेंगे। वही प्रश्न था, हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएंगे इस बात को। हाँ, एक मिनट माता जी। हाँ, प्रश्न ये है कि कभी कभी इस्कॉन के भक्त ऐसे इस्कॉन छोड़कर राधा कुंड में चले जाते हैं। ऐसे कई बार होता है, चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने भक्त टिक पाते हैं जाने के बाद? वो प्रश्न है, टिकना आसान नहीं है। हाँ, स्वतंत्र मन होने के नाते व्यक्ति अलग अलग विचार कर सकता है, स्वतंत्रता तो है, परंतु प्रभुपाद जी के आश्रय में रहकर हम सुरक्षित हैं। इस आश्रय को छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पढ़ा है, इसलिए तो खैर उनको जो सिखाने वाले पढ़ाने वाले कुछ उनके दृष्टि से समझाते हैं। हाँ माता जी पढ़िए। राग भक्ति क्या है, फिर से पढ़िए। नहीं नहीं, केवल राग भक्ति।
एक बार यदि आसक्ति विकसित हो जाने पर वह विधि निषेधों का पालन किए बिना ही कृष्ण के चरण कमलों की तत्काल सेवा कर सकता है।
ठीक है, तो राग भक्ति की परिभाषा क्या है ये भी आप लिख लीजिए, या इसे आपके किताब में अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, आगे पढ़िए।
इस अवस्था में वह मुख्य वृंदावन में कृष्ण के किसी मुख्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुभव कर सकता है। यह राधा को भक्ति कहलाती है।
हाँ, तो अभी कैसे एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, एक क्या मतलब है इसका, अब आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे, बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे हैं। अरे वो तो जाना है ना सबको। नहीं नहीं, कहाँ वहाँ। ठीक है, चार जगह घुमाएंगे। पांच रसों में रागानुगा भक्ति, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस की क्या उदाहरण दिए हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ने, अपने को कृष्ण के गौओं के समान या लकुटी के समान या वंशी के समान या पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करना। ये सब जीवित हैं, भगवान की पुष्पमाला वैजयंती माला ये भी जीवित है, चेतन है, भगवान के धाम में हर वस्तु चेतन है। फिर दास्य, दास्य रस में चित्रक, रक्तक, पत्रक जैसे सेवकों के पदचिन्हों का अनुसरण करना, मतलब इनके जैसे बनने की इच्छा रखना। सख्य रस बलदेव, श्रीदामा, सुदामा जैसे मित्र बनने की आकांक्षा करना। वात्सल्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बनने की आकांक्षा करना। छड़ी, छड़ी गोचारण में छड़ी इस्तेमाल करते हैं ना,
दास में चित्र
रक्तक, रक्तक, हाँ रक्तक नाम है,
जैसे
सेवकों, सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। सख्य में है बलदेव, श्रीदामा, बलदेव, श्रीदामा, श्रीदामा, सुदामा जैसे मित्र बनने की आकांक्षा करना। फिर वात्सल्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बनने की आकांक्षा करना। माधुर्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसे सखियां तथा उनकी दासियां, श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासियां, मतलब सखियों की दासियां, मंजरियों रूप तथा रति जैसे बनने की आकांक्षा करना। रूप, हाँ रूप तथा रति जैसे बनने की आकांक्षा करना। ठीक है। अच्छा अभी आपसे प्रश्न करने हैं। तो हम सुदामा बन सकते हैं? यहां लिखा है उनके जैसे बन सकते हैं। देखिए वहां पे जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, सब बुकिंग हो चुका है, अब जगह खाली नहीं है कोई। जितने भी नाम आप पढ़ते हैं सुनते हैं, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, अर्जुन, ये सब अपनी जगह में हैं। तो हम सुबल नहीं बन सकते, श्रीदामा नहीं बन सकते, मधुमंगल नहीं बन सकते, नहीं हम रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी ये सब बन सकते हैं, नहीं हम चित्रलेखा, चित्रलेखा सखी, तुंग विद्या सखी बन सकते हैं, श्रीमती राधारानी को तो बात ही नहीं है, नहीं हम कभी नंद महाराज या यशोदा माता बन सकते हैं, लेकिन उनके जैसे बन सकते, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, मतलब उस भाव में हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, इन पांचों रसों में से, पांच भावों में से किसी भी एक में। हाँ, अगर कोई कहे कि मैं नंद महाराज बन जाऊंगा, मैं सुबल बन जाऊंगा, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये मायावाद है। इसलिए भक्त कभी एक जो पहले से हैं भक्त वो नहीं बनना चाहते, वो उनके सेवक बनना चाहते हैं, नंद महाराज के सेवक या उनके सेवकों के सेवक। ठीक है। हाँ, ये तो तीन प्रश्न हुए, एक दो तीन, यही प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछा गया कि क्या इस्कॉन में रह के राधानों का भक्ति हो सकती है कि नहीं, आपका मत क्या है? हमने एक महत्वपूर्ण बात कही थी व्रजवास के बारे में, क्या है वो? तन से न हो पाए तो मन में तो वास करना चाहिए व्रज में, तन से व्रज में वास कर रहे हैं, मन से कहीं और हैं तो फिर क्या लाभ? गोष्ठानंदी प्रचार संस्था होने के नाते अवश्य महाप्रभु की कृपा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने प्राण त्याग दिए, कहां पर? कलकत्ता में, युद्ध भूमि में, जानबूझकर। उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर युद्ध भूमि में प्राण त्यागूंगा। क्यों कलकत्ता को युद्ध भूमि क्यों कहा उन्होंने? क्या युद्ध चल रहा था उस समय? प्रचार, क्योंकि वहां माया बहुत प्रबल है शहरों में, तो माया के विरुद्ध युद्ध चल रहा था और उन्होंने युद्ध शुरू किया था, वो सेनापति थे। उन्होंने कहा एक सैनिक के लिए युद्ध भूमि में ही प्राण त्यागना उचित है। श्रील प्रभुपाद लेकिन वृंदावन आए, वृंदावन आके उन्होंने प्राण त्याग दिया, परंतु फिर भी प्रभुपाद जी ने क्या किया? अपने वृद्ध अवस्था में 12 बार या 14 बार पता नहीं विश्व भ्रमण किया उन्होंने उस उम्र में। ऐसा नहीं कि यहां पर वो अंत तक रहे परागनु का भजन करने के लिए, अपने उनका भजन वही था, अनुवाद कर रहे थे, कृष्ण के बारे में बोले जा रहे थे। कि जैसे सैनिक अपने जूतों सहित युद्ध भूमि पर मारा जाता है तो वो बहुत महान युद्ध मौत मानी जाती है, तो भक्त के लिए भी। हाँ, तो ये बात है। तो और एक बात ये है कि राधानु का भक्ति के बारे में ये कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी की शिक्षा में कहते हैं कि रागानुगा भक्ति करने वाले भक्त को, रागानुगा भक्ति का भाव, ये जो अनुशीलन है जिसकी बात यहां चल रही है, कि वो एक भगवान के नित्य पार्षद का अनुगमन करता है वो अंदर से करना चाहिए, बाहर से एक साधक रूप से रहना चाहिए। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, बाहर की सेवा साधक रूप में होनी चाहिए, अंदर की सेवा सिद्ध रूप से होनी चाहिए। ये रागानुगम भक्ति से आगे बढ़ गए, तो इसलिए बाहरी रूप से अवश्य हम सबको गोष्ठानंदी संस्था होने के नाते हमें प्रचार करना चाहिए, परंतु ख्याल रखना चाहिए कि प्रचार करते करते अगर हमारी साधना ठीक नहीं रही, हमारी पढ़ाई ठीक नहीं रही, हमारा श्रवण कीर्तन ठीक नहीं रहा, हमने ठीक ढंग से नियमों का पालन नहीं किया, तो हम कैसे प्रचार कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रचार के आंदोलन में रह के साथ साथ में बहुत गहराई से श्रवण कीर्तन करके, नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन करके हम दोनों कार्य एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। संतुलन होना चाहिए दोनों के बीच में, श्रवण एक ओर, श्रवण कीर्तन और हमारी साधना दूसरी ओर प्रचार, वैसे संतुलन होना चाहिए, पहले हमारी साधना बाद में प्रचार, साधना के बिना प्रचार संभव नहीं है, इसलिए साधना पर बहुत जोर देना चाहिए। और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर निर्भर है, कोई व्यक्ति अधिक बाहर जाके कुछ करना चाहता है, कोई व्यक्ति स्वभाव से नहीं जाना चाहता है, उसका स्वभाव ही वैसे है, तो भिन्न भिन्न स्वभाव के अनुसार भक्तों की भिन्न भिन्न सेवाएं होती हैं। तो जो भी है ये दोनों चीजें भक्तों को करनी चाहिए, एक तो साधना श्रवण कीर्तन और दूसरी है जो अन्य कोई सेवा जो दी जाती है वो भी करते रहना चाहिए। प्रश्न है, प्रश्न यह है कि कितना समय साधना के लिए, कितना समय प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम दिया है उसका पालन हमें करना है, सारा सुबह का कार्यक्रम अच्छे ढंग से 16 माला कम से कम का जप, हो सके तो दिन में और एक क्लास, साथ साथ कुछ पढ़ाई रोज और सेवा, और समय समय पर ज्यादा पढ़ाई करें, कभी उत्सव के समय सेवा ज्यादा हो जाती है, जब इतना भारी नहीं रहता अधिक पढ़ाई कर पाएंगे हम, तो ऐसे जाना चाहिए। लेकिन मूल चीजें हैं सुबह का कार्यक्रम, फिर प्रभुपाद जी ने शाम के कार्यक्रम को भी किया था, तो जो शाम के कार्यक्रम में जा सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है, गीता क्लास आदि, ये कम से कम हमें पढ़ना तो चाहिए रोज। इस प्रकार से अच्छी साधना करके अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, फिर हम खूब प्रचार कर पाएंगे। जैसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आदमी को कितना खाना सोना पीना चाहिए और कितना काम करना चाहिए, अब क्या उत्तर देंगे? आवश्यकता के अनुसार। उसी प्रकार से साधना आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो प्रभुपाद ने क्या कहा था, केवल 16 माला जप करना है, चार नियम पालन करना है, केवल नहीं, प्रभुपाद ने कहा जितना जप हो सके उतना करो, 16 तो कम से कम नियम बताया गया है। जैसे परीक्षा में 50% मार्क होते हैं या 40% जो भी है पास होने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि विद्यार्थी सोचे बस मुझे 40 ही चाहिए बस, ऐसे नहीं। अच्छा विद्यार्थी चाहेगा कि अच्छे से अच्छे नंबर मिले, मैं अच्छे से अच्छे ढंग से इस विषय को समझ लूं, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने एक क्या कहते हैं, कम से कम मिनिमम एक स्टैंडर्ड दिया है हम सबको, इससे कम नहीं जाना चाहिए, ऊपर अवश्य जाना चाहिए। प्रेम नहीं, नहीं, प्रेम के स्तर तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक भगवत धाम नहीं जाते। अंत समय में नाम आना एक बात है, नाम यहाँ रहना दूसरी बात है।
कोई व्यक्ति प्रेम स्तर प्राप्त नहीं किया,
नहीं होगा कृष्ण का स्मरण। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कृष्ण का स्मरण नहीं किया, अंततः मृत्यु का स्मरण, मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएगा। जब तक प्रेम के स्तर को प्राप्त नहीं करेंगे, नियम यह है कि उसे आना पड़ेगा वापस, या कहीं आगे चल के आगे प्रगति करेगा। पहले कहां गया, फिर अपनी साधना की ना। जब यमदूतों का दर्शन हुआ, विष्णुदूतों का दर्शन हुआ, उस समय नरक लोक से, मृत्यु से बचे। और जब विष्णुदूत ने, दूतों ने यमदूतों को भेज दिया वापस, यमदूत चले गए, फिर अजामिल का क्या हुआ, कहां गए वो? हरिद्वार चले गए, और वहां जाकर क्या किया, साधना की, फिर चले गए वापस। विष्णुदूत, ये देखिए, विष्णुदूत आए क्योंकि उन्होंने नारायण का नाम लिया था, और यमदूत आए थे उनको लेने के लिए, लेकिन ये नियम के विरुद्ध था। जिस व्यक्ति ने हरि का नाम लिया है उसके लिए यमदूत नहीं आ सकते, नामाभास था, इसलिए विष्णुदूत आए। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में पाए जाते हैं, और ये सच है कि एक बार नारायण का नाम लिया और विष्णुदूत आ गए। तो प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ये सच है, परंतु हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए भी ये सच होगा, कि हम एक बार नारायण कृष्ण कह के हम संतुष्ट हो जाएं, कि फिर अजामिल के साथ एक बार नाम कह के हो गया तो हम भी एक बार ही नाम कहेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये एक उदाहरण देने के लिए, एक सिद्धांत की स्थापना करने के लिए ये एक ऐसी लीला हुई है, घटना हुई है, और ऐसे विशेष घटनाओं को शास्त्रों में प्रस्तुत किया गया है हमारी जानकारी के लिए, ताकि इससे कुछ हम सीख सकें। हालांकि ये सच्ची घटनाएं हैं, फिर भी हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। जैसे चार कुमारों ने एक बार तुलसी के, भगवान के चरण कमलों में अर्पित किए हुए तुलसी दलों का गंध लिया, सुगंध लिया, शुद्ध भक्त बन गए। हम तो रोज लेते हैं, कितनी ज्यादा लेते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं है, होता है लेकिन शुद्ध भक्त तुरंत नहीं बन जाते, है ना? तो उनके लिए हुआ, सच हुआ, वो झूठ नहीं है। चार कुमारों के साथ जो हुआ हुआ, वो सही है, परंतु हमारे लिए पद्धति है, बार बार हमें गंध लेना चाहिए निर्माल्य का। तो उसी प्रकार से 16 माला कम से कम जप हमें करना चाहिए, और केवल 16 माला की बात नहीं है, ये क्वालिटी की बात है, किस भाव से हम जप कर रहे हैं। ये कोई गणित की बात केवल नहीं है कि बस 16 माला कर लिए, इतने माला हो गए तो हम चले जाएंगे, लेकिन कैसे हमें वास्तव में भगवान का नाम लिया है, कि क्या हम केवल नाम के जैसे कुछ हम ध्वनि कर रहे हैं, मुख से निकाल रहे हैं, तो हृदय की बात है ये। हृदय से अच्छी तरह से हमने भगवान का नाम लिया तो अवश्य भगवान हमको लेकर जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, आज काफी देर हो गई। तो विषय काफी भारी था, इसलिए गंभीर था विषय। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, गौर प्रेमानंदे।